நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வ்யாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா பகவதே உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டிகீ. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஆ ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆத்மஸ்கந்த் ஜோ பாவ சந்தேஷ் ஹை உஸ்கா தசமா அத்யாய கா ஸ்லோக சங்க்யா 7-25 தக் சர்ச்சா கரேங்கே. ஐராவதம் திக்கரணி ஆரூட சுஷுபே ஸ்வராத் யதா ஸ்ரவத் அப்ரஸவணம் உதயாத்ரிம் அஹர்பதிஹி. ஐராவதம் திக்கரிணம் ஆரூட சுஷுபே ஸ்வராத் யதா ஸ்ரவத் ப்ரஸவணம் உதயாத்ரிம் அஹர்பதிஹி. ஐராவதம் திக்கரிணாம் ஆரூட சுஷுபேஸ்வராத் யதா ஸ்ரவத்ர ஸ்ரவரணம் உதயாத்ரிம் மஹர்பதிஹி. ஐராவதம் திக்கரிணாம் ஆரூட சுஷுபேஸ்வராத் யதா ஸ்ரவத்ர ஸ்ரவரணம் உதயாத்ரி மஹர்பதி. ஐராவதம் திக்கரிணம் ஆரூட சுசுதேஸ்வராத் யதா ஸ்வப்ன ப்ரஸ்ரவணம் உதயாத்ரி மஹர்பதி. ஐராவதம் திக்கரிணம் ஆரூட சுஷுபேஸ்வராத் யதா ஸ்ரவத்ர ஸ்ரவணம் உதயாத்ரி மஹர்பதிஹி. ஐராவதம் திக்கரிணம் ஆரூட சுஷுபேஸ்வராத் மாதாஜி. ஐராவதம் ஐராவத் பர் திக் கரணம் சர்வத்ர ஜாக் சக்னே வாலே விஷால் ஹாதி ஆரூடா சவார் ஹோகர் சுஷுபே தேக்னே மே அத்யந்த சுந்தர் லக்னே லகா ஸ்வராத் இந்திர யதா ஜிஸ் தரா ஸ்ரவத் பஹதே ஹுயே ப்ரஸ்ரவணம் ஸ்வரா கி லஹரே உதய ஆத்ரிம் உதயகிர் பர் அஹஸ்பதி சூரிய. அனுவாத் ததா தாத்பர் ஸ்ரீல பிரபாத் த்வாரா ஸ்ரீல பிரபாத் கி. ஏக் ஐசா ஹாதி ஜோ கஹீ பி ஜா சக்தா ஹை ஔர் ஜோ சிக छिड़कने के लिए जल तथा सुरा को संचित रखता है. ऐसा ऐरावत हाथी पर चढ़कर इंद्र ऐसा लग रहा था मानो उदयगिर से जहां जल के आगार हैं सूर्य निकल रहा हो. तात्पर्य उदयगिर पर्वत की चोटी पर अनेक झीलें हैं जहां से झरने के रूप में निरंतर जल झरता रहता है. इसी प्रकार इंद्र का वान ऐरावत जल तथा सुरा संचित रखता है और इंद्र के ओर उनकी फुहार छोड़ता रहता है। इस प्रकार ऐरावत की पीठ पर बैठा इंद्र उदयगिर से ऊपर उठते तेजस्वी सूर्य की भांति प्रतीत हो रहा था। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया तच मेलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंघं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगना रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैगना ललिता श्रीविशाखानुतं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नाम्नि नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्तकांचन गौरी राधे वृंदावनेश्वरी कृपानुसृते देवी प्रणमामि हरि प्रिय श्री रामाशरणं समस्त जगतं रामं विना का गति रामेणा प्रतिहन्यते कलमलं रामाय कार्यं नमः रामात्रासति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशी रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामे त्वमेवाश्रया वांछकल्पतरुभ्यश्चा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवज्ञाभीष्टदोऽहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चनुतां शरण्यं भृत्यार्थहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। समस्त भक्तगणों को हरे कृष्णा। ये प्रसंग अध्याय का देवताओं तथा असुरों के बीच संग्राम से सातवां श्लोक से शुरू करना होगा क्योंकि शंकातुर्य मृदंगा भेरिडा मरिणाम महान हस्त रथपत्ति नाम नजता निस्सनो गवात शंखों तुरिया ढोले भैरियों तथा डमरियों की आवाजों के साथ ही हाथियों घोड़े तथा रथ पर चढ़े और पैदल सिपाहियों से निकलते ध्वनियों से कोलाहल पूर्ण था। रचनो रथ विस्तत्र पत्ति भी सह पत्रया हया हैरवी अचय भई समसंजत संयुगे। उसी युद्धभूमि में रथी अपने विपक्षी रथियों से पैदल सेना विपक्ष पैदल सेना से अश्वारोही विपक्ष अश्वारोहियों से तथा हाथियों पर सवार सैनिकों विपक्ष हाथी सवार सैनिकों से भी भिड़ गए। इस प्रकार समान पक्षों में युद्ध होने लगा। कुछ सैनिकों ऊंट पर कुछ हाथियों पर कुछ गधों पर कुछ सफेद मुंह वाले लाल मुंह वाले बंदरों पर कुछ बाघों पर कुछ सिंहों पर सवार होकर लड़ने लगे। इस प्रकार वे सब युद्ध करे जा रहे थे। ये राजन कुछ सैनिक गीधों, चिल्हों, बगलों, बाजों तथा भास पक्षियों की पीठ पर बैठकर लड़े। कुछ ने विशाल मच्छियों तिमिंगल को भी निगलने वाली तिमिंगलों की पीठ पर, कुछ ने सर्वों की पीठ पर तो कुछ ने भैंसों, गौंडों, गायों, बैलों, वन गायों तथा अरणों की पीठ पर सवार होकर युद्ध किया। अन्य लोगों ने सियारों, चूहे, छिपकलियों, खुरहों, मनुष्यों, बकरों, काले हिरणों, हंसों तथा सोरों की पीठ पर बैठकर युद्ध किया। इस प्रकार विकृत शरीर वाले पशुओं सहित जल, स्थल तथा आकाशचारी पशुओं के पीठ पर बैठी दोनों सेनाएं आमने सामने होकर आगे बढ़ रही थी। हे राजन, हे महाराज पांडु के वंशज, देवता तथा असुर दोनों ही के सैनिक छत्रों, रंग बिरंगी झंडियों तथा बहुमूल्य रत्नों एवं मोतियों से बनी मूठ वाले छातों से अलंकृत थे। वे मोर पंख से बने तथा अन्य पंखों से सुशोभित थे। ऊपरी तथा अधो वस्त्रों के वायु में लहराने के कारण सैनिक अत्यंत सुंदर लग रहे थे और चमचमाती धूप में उनकी ढालें, उनके गहने तथा तीक्ष्ण स्वच्छ हथियार आंखों को चौंधिया रहे थे। इस तरह सैनिकों की टोलियां जलतरों के समूहों से भरे हुए दो सागरों के समान प्रतीत हो रही थी। अब युद्ध के लिए सुविख्यात सेनापति विरोचन पुत्र महाराज बलि वैयायस नामक अद्भुत वायुयान पर आसीन थे। हे राजन, सुंदर ढंग से सजाया गया ये वायुयान मैदानों द्वारा निर्मित किया गया था और युद्ध के लिए सभी प्रकार के हाथियों, हथियारों से युक्त था। ये अचिंत्य तथा अवर्णनीय था। ये कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता था। इस वायुयान में एक सुंदर छाते के नीचे बैठे तथा सर्वोत्तम चमरों से पंखा झले जाते हुए एवं अपने सेना नायकों से घिरे महाराज बलि इस प्रकार लग रहे थे मानो शाम के चंद्रमा उदय हो रहा हो और सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो। अलग महाराज बलि को चारों ओर से असुरों के सेना नायक तथा अधिपति घेरे थे। वे अपने अपने रथों पर सवार थे। इनमें निम्नलिखित असुर थे, नमुची, शंबर, बाण, विप्रचित, अयोमुख, दुमूर्धा, कालनाभा, प्रहेति, हेति, इल्वल, शकुनी, भूत संताप, वज्रदंश, विरोचन, हयग्रीव, शंखशिला, कपिल, मेघदुंदुभि, तारक, चक्रदुक, शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनीम, त्रिपुराधिपा, मया, पुलोमा के पुत्र काले तथा निवात कवच, ये सारे असुर अमृत के अपने अपने भाग से वंचित रह गए थे। उन्होंने केवल समुद्र मंथन का श्रम उठाया था। अब ये सुरों के विरुद्ध लड़ रहे थे और अपने सेनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सिंह गर्जना कर समान कोलाहल किया और जोर से अपने अपने शंख बजाए। बलभित अर्थात इंद्रदेव अपने रक्त पिपास प्रतिद्वंदियों की यह स्थिति देखकर अत्यंत कुपित हुए। ऐरावतम धिक्करिणम आरूढ़ शुश्रभे स्वराज यथा स्वप्न स्रवत प्रस्रवर्णम उदयादे महपति। एक ऐसा हाथी जो कहीं भी जा सकता है और जो छिड़कने के लिए जल तथा सुरा को संचित रखता है, ऐसे आरावत हाथी पर चढ़कर इंद्र ऐसा लग रहा था मानो उदयगिरी से जहां जल के आगार से सूर्य निकल रहा हो। इस प्रसंग शुरू हो जाता है, इससे पहले थोड़ा समय पिछले जाना पड़ेगा। एक समय दुर्वास महर्षि जा रहे थे और इंद्र अपना हाथी ऐरावत हाथी, जो इंद्र का वाहन है हाथी, उसका नाम ऐरावत है, विशेष है वो, सफेद कलर रंग का रहता है, अब सभी को एक सुंड होता है, उसके लिए दो होता है, कई दफा तीन भी बता देते हैं, विशेष है वह ऐरावत। उस पर बैठकर बड़ा आनंद से जा रहे थे, ऐसा लग रहा बहुत प्रभावशाली अत्यंत तेजस्वी, इंद्र साधारण नहीं है, महा तेजस्वी है, परंतु तेज का साथ भगवान का कृपा से, भगवान का भक्ति भी है लेकिन भक्ति करने का अवसर नहीं मिलता। स्वर्ग में जितने भी देवता है समस्त देवता भगवान का भक्त है, परंतु भक्ति करने के लिए उनको समय नहीं है। क्यों नहीं है भगवान का भक्ति करने के लिए क्या समय क्यों नहीं? स्वर्ग में कौन जाते हैं? जो कोई पुण्य कर्म किया है उसको फल भोगना चाहते हैं, वही स्वर्ग में जाता है ना, और स्वर्ग पुण्य उसका फल भोगना, आराम से रहना, शक्ति चाहिए हमें, आराम चाहिए, भोग भोगने की इच्छा था इसलिए उधर इंद्र स्वर्ग में गया। यदि उसकी इच्छा रहता मैं भगवान का भक्ति करना है तो स्वर्ग में नहीं जाना था, ये मनुष्य पृथ्वी पर भी मनुष्य से योनि लेकर भक्ति करना था। पांचों स्कंद में पढ़ लेना 19वां अध्याय में जहां जम्बुद्वीप का वर्णन है, वहां देवता बोलते हैं हम अमीशम, हमें क्यों ऐसी योनि मिला है, देवता क्यों बने हमें, स्वर्ग में क्यों है हम, अपना आप को बड़ा बुरा मानते कि हमें स्वर्ग मिला है, हम सब कुछ आनंद भोगते लेकिन भगवान का भक्ति करना चाहते हुए भी कर नहीं पाते। नायत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा नासाधवो भागवत तदाश्रया नायत्र यज्ञेषु मुखा महोत्सव सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। इंद्रलोक सुरेश लोक, स्वर्ग में कई लोक है, उसमें से सबसे इंद्रलोक सबसे बड़ा प्रभावशाली ऐश्वर्य है, आनंद भोग सकते हो। बोल कहा जाता है कि देवता अपना आपको बोल रहे हैं कि जिस स्थान पर नायत्र वैकुंठ कथा श्रद्धा पगा, जहां भगवान का कथा अमृतमय, भगवान का श्री कथा नहीं होता, जहां भगवान का भक्त का आना जाना आगमन नहीं होता, जहां भगवान का हरिनाम से नायत्र यज्ञेश मकाम उत्सव, भगवान के संबंध यज्ञ नाम महायज्ञ नहीं होता, ऐसा स्थान यदि इंद्रलोक भी हो तिरस्कार करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ है भक्ति नहीं है, एनीथिंग माइनस भक्ति कोई फायदा लाभ नहीं है, उस इंद्रलोक में सब कुछ है भगवान का भक्ति नहीं है, इसलिए देवता अपना आप को तिरस्कार के, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही एक साधन है, चाहे कोई भी देवता हो, भगवान शिव जी भगवान और ब्रह्मा जी के और सूर्य भगवान को छोड़कर समस्त देवताओं के मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, इस मनुष्य शरीर से हरिभक्ति करके ही भगवत धाम जा सकता, कोई भी देवता यहां तक सिद्ध लोक से भी उनसे जा नहीं सकते, वहां पर भगवत धाम में आपके दश स्कंद में दूसरा अध्याय का याद होगा, जहां ब्रह्मा तथा शिवजी अन्य देवता भगवान कृष्ण को माता देवी के गर्भ में थे, स्तुति करते हुए बड़ा सुंदर ढंग से करते हैं इस बात के बारे में उल्लेख करते हैं, इन्नेरविंदाच्छ विमुक्त मानिनस्तयस्त भावा विशुद्ध बुद्धयो आरूह कृच्छेन परम पदम तथा पतंत्यनाधृत युष्मदान गृही। जो व्यक्ति साधना से अपना भगवान ब्रह्मा लोक में भी जाएगा, और ब्रह्म लोक गया, सब सिद्ध लोक गया, उनके समस्त सिद्धियां प्राप्त हुआ, जो इच्छा वो प्राप्त हो रहा, जो करना चाहता वो कर सकता है, वो सोचा कि मैंने सभी प्राप्त कर लिया, मैं मुक्त हो गया, मुक्त मानिना, मुक्त नहीं हुआ लेकिन मन से सोचता है कि मैं भगवत समान हो गया, जो चाहता हो रहा, मन का लड्डू खा रहे हैं, एक्चुअली नहीं हुआ, मुक्त मानिना बोल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति आरु या कुछ न वजह दी वो ब्रह्मलोक भी जाएगा, भगवान हमें देखेंगे, पदंति वो पतन होकर भूलोक में गिर जाते हैं, क्योंकि आप सब साधना किया लेकिन आपके चरण कमलों का सेवा से विमुख था,
अनादृत युष्मदांगरी। युष्मदांगरी क्या, भगवान आप चरण कमलों का सेवा छोड़कर बाकी सब कुछ किया। अर्थ है कि भगवान के सेवा चरण कमलों का सेवा से अलग कोई भी है वो जन्म मृत्यु का चक्कर में पड़ेगा। केवल भगवान के चरण कमलों से मुक्त होना है तो जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवत धाम जाना है तो केवल भगवान के चरणों का सेवा जो भक्ति कहा जाता है, वही इसका और उपाय नहीं। वो भक्ति केवल ये मनुष्य शरीर में ही लब्ध है, इसलिए मनुष्य शरीर को भूलोक को कर्म भूमि कहा जाता है। इस भूलोक में जो मनुष्य शरीर में हमें कुछ भी बिना प्रयास का नहीं मिलेगा, इस मनुष्य शरीर में जो हम प्रयास करते हैं उसका फल भोगने के लिए 12-13 भुवन है, हम बीच में है, 7 पाताल लोक है, हमारे ऊपर 6 ऊर्ध्व लोक है। और ये सभी किस लिए है, केवल मनुष्य शरीर में जो कर्म किया है उसको फल भोगने के लिए। इसलिए वहां पर कोई खेती बाड़ी नहीं होता, इधर जितना हम किया जितना दान पुण्य का हम करते हैं उधर मिलेगा। पद्म पुराण में एक श्वेत महाराज का बड़ा अच्छा सृष्टि कांड में बड़ा वर्णन आ जाता है, दान नहीं करेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। श्वेत महाराज लंबा लेकिन संक्षिप्त में बताएंगे, श्वेत महाराज बड़ा यज्ञ करने के कारण उसका फल स्वरूप उसको ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ था। ब्रह्मलोक गया, एक दिन गया कुछ खाने के नहीं मिला, अगले दिन वो पूछा ब्रह्मा जी को, भगवान अब मेरे यहां खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोलते, वत्स तुमने बहुत यज्ञ किया, यज्ञ के प्रसाद बाद में जो है आप प्रसाद का वितरण किसी को नहीं किया, अब जितना अनुष्ठान किया हर एक किया बहुत अच्छा किया, लेकिन सब कुछ में कहीं भी प्रसाद का वितरण किसी को खिलाया नहीं है, और यहां पर जो उधर भूलोक में खिला देते हैं वही सूक्ष्म रूप से यहां पर मिले प्राप्त होगा, इसलिए आप यहां पर कुछ नहीं मिलेगा। बोलते मैं कैसे जीऊंगा। ब्रह्मा जी बोलते तुम्हारे लिए मैं वरदान देता हूं, 6 महीने में एक दफा तुम अपना शरीर को स्वयं खुद खाना पड़ेगा। बोलते शरीर तो निकल गया, मेरा वरदान से जिस स्थान पर तुम शरीर छोड़े थे उसी स्थान पर तुम्हारा शरीर यथारूप मिल जाएगा, अब उसको खाना पड़ेगा। श्वेत महाराज बोलते भगवान ये तो बड़ा निकृष्ट कार्य है, ये राक्षसों का कार्य है, ये तो मेरे लिए तो ठीक नहीं है। बोलता और कोई उपाय नहीं है, फिर इससे मुक्ति का होगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं यदि संयोगवश आप अगस्त्य महर्षि का दर्शन प्राप्त हो, यदि अगस्त्य महर्षि अपने किया हुआ समस्त तपो बल को आधा भाग आपको दे दें तब जाकर इससे इस कार्य से मुक्त हो जाओगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि इस कर्म इस मनुष्य शरीर में हम जो कुछ करते हैं, इसलिए आप हरेक एकादशी में हरेक अमर पुण्य कार्य कोई भी उत्सव होता है प्रसाद वितरण होता है कि नहीं, इस कौन में तो प्रसाद वितरण कुछ होता नहीं है, सिंग डांस एंड ईट फिस्ट। तो यह है पूरा जितने भी यज्ञ है उसका एक विधान है, जहां उसका अन्न भगवान का प्रसाद को वितरण का बिना और कोई उपाय नहीं, स्वर्ग में भी जाओ कहीं भी जाओ। तो कहने का अर्थ है कि इसलिए कह रहा था कि ये मनुष्य शरीर में जो कुछ कार्य करते हैं उस कार्य के अनुसार फल स्वरूप हमें मिलता, स्वर्ग भी सब मिलेगा, परंतु भगवान का धाम में जाना वैकुंठ में जाना है तो भी ये मनुष्य शरीर एक साधन है। और यहां पर इंद्र जो है, इंद्र उपाधि है या उनका नाम है, उपाधि है इंद्र ना, कोई नाम नहीं है। अब भारत का राष्ट्रपति कोई भी बैठेगा राष्ट्रपति बोलोगे नहीं, उनका नाम से आप और हम थोड़ी बुलाएंगे, राष्ट्रपति बैठे हैं आए हुए। इसी प्रकार उपाधि है, इस समय कौन इंद्र है, पुरंदर। जब मनु महाराज बदल मनवंतर बदल जाता है इंद्र भी बदल जाएंगे, अष्ट दिग्पाल भी बदल जाएंगे, सप्तऋषि मंडल भी बदल जाएंगे, मनु बदल जाते हो तो ये भी सब बदल जाएंगे। तो इंद्र का ऐश्वर्य है, तो ऐश्वर्य से मद होकर अगस्त महर्षि आते हुए देखा नहीं, फिर भी महर्षि कृपा करके इंद्र को देखकर बड़ा प्रसन्न थे, अपना गले में जो हार था इंद्र को दे दिया। इंद्र जो ले कर जो है उसको अपना हाथी का सिर पर डाल दिया, हाथी पशु है, और हाथ उसको हार को लेकर अपना पैरों में डालकर दबा दिया। इसको देखकर महर्षि दुर्वासा महर्षि को बड़ा क्रोध आया। दुर्वासा बड़ा प्रसन्न भी होते हैं, क्रोध भी आ जाते हैं। क्रोध से उनको अशाप दे दिया, सम तुम ऐश्वर्य से मदान हो चुके हो, ऐश्वर्य से मुक्त हो जाओगे, समझ ऐश्वर्यहीन हो जाओगे तुम, शाप दीजिए, चला गया। यहां पर दूसरे स्थान पर आ जाता, विष्णु पुराण में ज्यादा इसका वर्णन आ जाता है। और जब शुक्राचार्य देवताओं के प्रति युद्ध के लिए बलि महाराज को तैयार कर रहे थे, उनको समझ में आया कि अब इस देवता जो है ऐश्वर्य हो चुका है, क्योंकि वो शापग्रस्त है, दुर्वासा महर्षि के शाप से ग्रस्त है, उसमें शक्ति क्षीण हो चुका है, और ये समय उचित है कि दानवों को असुरों को पर युद्ध के लिए करना। इससे पहले हम पढ़े हैं अमृत मंथन किया था, इस अमृत मंथन किया, अमृत मंथन को होने का अमृत जब प्राप्त हुआ और भगवान श्री हरि मोहिनी रूप धारण करके देवता जो उनका भक्त है उनको तो अमृत दिखला दिया, लेकिन बाकी को दिया नहीं है, और इतने में वह अदृश्य भी हो गया। इसको लेकर समस्त देव दानव प्रति, दानव चार प्रकार के होते हैं, पहले जब ये बताया था चार प्रकार का दानव होते हैं। इंग्लिश में डमन एक ही वर्ड है, इंग्लिश में कई शब्द ऐसा है इक्वलेंट नहीं मिलेगा। देवताओं में भी कई प्रकार का है, स्वर्ग वगैरह ऊपर लोकों में यक्ष राक्षस किन्नर गंधर सिद्ध चारुण विद्याधर, बहुत सारे प्रकार के देवी देवता अप्सरा, ये सभी अलग अलग प्रकार का है, लेकिन इंग्लिश में इक्वल और नहीं कोई शब्द नहीं है, इसलिए प्रपात डेमिगार्ड यूज करते हैं। भारत में कोई ज्यादा इसका चर्चा नहीं करते, भारत के देशों में डेमिगार्ड बोलने से कई हमारा भारतीय कम्युनिटी वालों का बड़ा क्रोध आता है, बोलते भाई देवताओं को लोग डेमिगार्ड क्यों बोलते हो, क्योंकि इक्वल नहीं है। डिक्शनरी में डेमिगार्ड करता है ह्यूमन बीइंग सुपीरियर मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल देन द ह्यूमन बीइंग, वो लिविंग एंटिटी जो मनुष्यों से ऐश्वर्य से हर अवस्था में हमारे से उन्नत स्थान में है वो है। इस प्रकार दानों के लिए भी चार प्रकार का है, एक है असुर, जैसा कि इसमें दिया देवता और असुरों का विष संग्राम है, असुर है। असुर कोई योनि नहीं है, जो भी भगवान का सत्य को स्वीकार नहीं करते, मैं हूं मनुष्य हूं लेकिन परंतु यदि मैं भगवान का सत्य से है, भगवान कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं, आजकल बहुत ज्यादा है ना ऐसी जाओ, वो सब असुर है। रावण कोई असुर नहीं था, राक्षस नहीं था, रावण ब्राह्मण नहीं, उसका महा पिताजी विश्रवा ब्रह्मर्षि है, लेकिन रावण को राक्षस नहीं बोल, रावण असुर बोलते हैं, क्योंकि उनको अधिकार में उनको शक्ति मिलने के पश्चात समस्त लोगों को जीतने के पश्चात जो है अपना आपको सोचा है कि मेरे से बड़ा और कोई नहीं, मैं यमराज भी मेरा अधीन में है, काल मेरा अधीन है, भगवान का प्रभुता को तिरस्कार कर दिया, इसलिए उसको असुर कहा जाते हैं। कोई भी हो जो भगवान का प्रभुता स्वीकार नहीं करते हैं, तिरस्कार करते हैं, वो सब असुर है। अदिति के पुत्र सभी देवता बने, उनका बहन दिति थी, कश्यप महर्षि के कई पत्नियों में से अदिति दिति थी। दिति का पुत्र जितने भी है हमेशा दिति को एक स्पर्धा रहता, मेरा बहन के पुत्रों को पूरे विश्व में आदर है, मेरे पुत्रों को आदर नहीं करते। माता का जिस प्रकार का मानसिक चिंतन होता उसी प्रकार का बच्चे भी बन जाते हैं। माता अपना बहन के प्रति द्वेष भाव से कारण जो है पुत्र भी द्वेष भाव से पैदा हो गया, इसलिए इसला प्रपाल बोलते हैं शादी होने का प्रथम संघ में जब होते हैं पति पत्नी मिलते हैं उस दिन पति पत्नी तथा दोनों 64 माला जप करना चाहिए। अब जब 64 माला जप करोगे आप जब नाम हरि नाम जब नहीं भी करोगे आपका जीव जो है जब करते रहेगा, आप अभ्यास करके देख लेना ताकि दोनों का मानसिक चिंतन जो है केवल भक्तिमय हो जाएगा, सुख रहेगा। इसलिए जो बच्चा भी पैदा प्रथम संघ में जो कंसेप्शन होगा, गर्भ धारण हो जाएगा, वो बच्चे का भी भक्त बनने का संभावना है, अन्यथा असुर बन सकता है। सिनेमा देखकर प्रथम संघ करेंगे, सिनेमा चाइल्ड फेल हो जाएगा, आजकल हो ही रहा ना। अस्तु, तो दिति का पुत्र है जितने भी है उसको दैत्य कहा जाता है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, बलि महाराज भी दैत्य है, प्रहलाद महाराज भी दैत्य है, प्रहलाद महाराज भी भक्त थे, विरोचन प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन भी भक्त थे, विरोचन पुत्र बलि महाराज भी भगवान का भक्ति थे, ये सभी भगवान का प्रभुता को कभी तिरस्कार नहीं किया। बलि महाराज इसमें दिया है, बलि महाराज का सेनाधिपति में युद्ध हो रहा, क्यों? उनका पिता विरोचन को इंद्र तथा देवताएं अधर्म से उसको संहार किया था, विष्णु पुराण में इसका वर्णन आ जाता है। इसके लेकर बलि महाराज जो प्रहलाद महाराज और देवताओं के बीच में जो संधि का था उसको तिरस्कार करके युद्ध प्रकट किया था ऋषि युद्ध में। तो इसलिए दो भक्ति भी है लेकिन उनको दैत्य कहा जाता है। प्रायः उसका पश्चात जो है बलि महाराज के पुत्र बाणासुर था, फिर भगवान के विरुद्ध हो गया, अब जानते कथा। तो प्रायः दिति के पुत्र जितने भी थे देवताओं से भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते थे। दूसरा कश्यप महर्षि का दूसरा पत्नी और एक पत्नी था दानी, उनका पुत्र भी जितने थे हमेशा देवताओं से स्पर्धा रखता था, इसलिए उन पुत्रों को दानव कहा जाता है। और चौथा कैटेगरी का राक्षस, जो सृष्टि के शुरू में ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि किया गया, जब उनका सृष्टि करने का तुम लोग क्या काम करेंगे, बोलता हम रक्षा करेंगे, कहां पानी का रक्षा करेंगे, असुर लोक पाताल लोक में रहता है, इसलिए उसको राक्षस का रक्षा करने हेतु उनका सृष्टि हुआ था। राक्षस वो कैनिबल से मांसाहारी सब कुछ कहा लेते हैं, ये केवल यही है, बाकी तीनों का कोई नहीं है कि ये सब कुछ काम करे। इस प्रकार का चार प्रकार का राक्षस प्रवृत्ति का होते हैं, असुर प्रवृत्ति का है, इंग्लिश में डेमोनिक वॉर बिटवीन द डेमिगॉड्स एंड डेमन्स बोलकर दिया, इसलिए थोड़ा विशेष में बताया। इस युद्ध में जब दोनों के युद्ध बीच में अमृत का बंटवारा नहीं हुआ ना था, इसलिए समस्त दानव प्रवृत्ति वाले जितने थे असुरगण थे सभी बलि महाराज के नेतृत्व में समस्त देवताओं के प्रति युद्ध घोषणा करते हुए युद्ध के लिए आ रहे हैं, उसी का वर्णन कर रहे हैं कैसा कैसा आ रहे हैं। एक बड़ा विशेष है कि पहले जमाने में युद्ध भी होता था धर्म के अनुसार, पहले युद्ध में धर्म होता था, अभी धर्म में युद्ध हो रहा ना, अपोजिट हो गया पूरा। अभी रचनो रथम तथा पति भी सहपत्तया, जो रथी है रथ में बैठकर युद्ध कर रहे, दूसरा उससे युद्ध कर रहे केवल रथ वाले ही है, एक नहीं कि पैदल आकर वो पैदल सेना आकर रथ कर, नहीं, मतलब जिस स्थान पर जो हाथी के ऊपर बैठे हैं वो हाथी वाले के साथ लड़ेगा, अश्व के ऊपर बैठे हैं अश्वारोही के ऊपर लड़ेगा। और देखिए उसका ये धर्म था, आजकल का लड़ाई कैसा हो जाता है, देखो पिक्चर तो देखा होगा, जो लड़ाई नहीं भी देखा तो पिक्चर में सुना होगा ना कम से कम, आजकल तो पूरा विपरीत ही है। तो रथ में आजकल टैंक में जो लड़ते हैं वो पैदल चलने वालों के सिपाहियों को मारते हैं, पैदल सिपाही चल रहे हैं ऊपर से विमान में आकर वो बॉम्ब कर देते हैं। रथ पहले जमाने में युद्ध हो जाता था दिन का समय, प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात शुरू होना, सूर्यास्त से पहले समाप्त होना, सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होता। अभी क्या है, लड़ाई कभी दिन में नहीं होता, आजकल लड़ाई होता रात में ही होता। अब आप लोग ना समाचार सुनते हैं दिन में, लेकिन लड़ाई होता ही रात में, सब उल्टा चल रहा, विपरीत चल रहा, क्योंकि कलयुग अधर्म है। इसलिए बोला था पहले युद्ध में धर्म था, अब तो धर्म में युद्ध है। तो ऐसा किस प्रकार का असुरगण जो अलग अलग अपना वाहन भी देखिए, किसी को छोड़ा नहीं है, छिपकली तक लिया वाहन अपना, अर्थ है कि जैसा जिस प्रकार का मानसिक चिंतन रहता उसी प्रकार का अपना लेगा। तो मूषिक भी लिया, चूहों को भी लिया। आप बोलोगे फिर तो भाई ये चूहा तो गणेश जी का भी चूहा लिया था, गणेश भगवान भी चूहा है, उसका तत्व चिंता ना लगे, कभी बात करेंगे। राजन सैनिक गिद्धों, चिल्हों, बगुलों, बाजों तथा भास पक्षियों के पीठ पर बैठकर अलग अलग प्रकार का वाहन लिया है। अब देखते हैं किस प्रकार का, कई जलचर जीवों के ऊपर भी वाहन ले लिया। क्यों? वरुण लोक से आया, वरुण लोक तो पाता जल में रहते हैं हम लोग, उदरवासी जितने भी युद्ध के लिए आए हैं अब तो वरुण लोक से लेकर आना चाहिए, जलचरों के वाहन बनाकर लाए। और आकाश में उड़ने वाले जो जीव है, पक्षियों को वाहन ले लिया है। अब भूलोक में रहने वाला पक्षियों को तो नहीं लेगा ना, फिर तो भूलोक वाले तो क्या है, घोड़ा वगैरह लेंगे, कोई गधा लेंगे, भैंस लिया है। अलग अलग कहने का अर्थ है कि सभी प्रकार के जीव जितने भी थे उस युद्ध में प्राप्त किया। देवताओं का गुण और दानों का गुण जो है मनुष्य में भी है। भगवद गीता का 16 अध्याय का पहले 3 श्लोक में देवताओं का गुण बताया, याद है ना? और देवताओं का गुण क्या है, भक्तों का गुण चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में जो बताया 26 गुण है, वही देवताओं का गुण है। इसलिए भागवत में 5 स्कंद में कहा गया कि यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना सर्वै गुण तत्र समाहित सुरा। जब कोई मनुष्य भगवान का भक्त बन जाते हैं उसमें समस्त देवताओं का गुण आ जाता है, इसलिए भक्तों की देवता का समान माना जाता है। भक्तों के जैसे जो शुद्ध भक्त बनते हैं उसमें वो उसको देवता का रूप आता है, तभी भक्तों के ही दफा भगवान शब्द से उसको संबोधित किया जाता भी है। समस्त देवताओं का समस्त गुण आ जाते हैं और असुरों का गुण विपरीत है। 16 अध्याय में देवताओं का गुण तो 3 श्लोक से बताया गया और असुरों का गुण बाकी जितना भी श्लोक से है पूरा असुरों का गुण बता दिया। असुरों के गुण में क्या, असुरों का क्या है, कोई भी मनुष्य है असुर गुण क्या है, ई अंत काम भोगार्थम अन्याय न अर्थ संगम। आजकल वही हो रहा ना, कैसे भी हो पैसा कमाना, धर्म का नाम कुछ रहा नहीं है। चाहे एग्जाम्पल हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का अर्थ क्या है, हिरण्याक्ष का अर्थ क्या है, हिरण्य अच्छे अच्छे करते आंख है ना, जो हर एक भौतिक जगत में हर एक वस्तु को धन का रूप में देखना चाहते हैं वो सब हिरण्य अच्छा। आजकल पहले जमाने में देखिए जो भी गांव से आ रहे हैं खेतीबाड़ी करते थे, खेतीबाड़ी कैसा करते थे, खेतीबाड़ी वो करते थे जो हमारे घर के लिए कोई जरूरत है, वो उपजाऊ करते थे। भाई हम चावल खाते हैं, चलो भाई अभी बारिश का मौसम है 2 एकड़ चावल डालते हैं, हमारे को बाजरा भी चाहिए, महाराष्ट्र में तो बाजरा खाते हैं, ज्वार खाते हैं, राजस्थान में भी खाते हैं, आंध्र प्रदेश में खाते हैं, तेलंगाना में, तो वो बोलेंगे भाई ज्वार डालेंगे, चलो अभी संक्रांति के बाद जो है मौसम ठंडी का मौसम है, चलो ज्वार डालेंगे, बाजरा डालेंगे। अर्थ है कि जो हमारे को जीवन निर्वाह के लिए जो चाहिए, जो धान थे उसका उपजाऊ करते थे। अभी क्या हो रहा, हमारे क्या हमारे जीवन के लिए क्या चाहिए वो नहीं है, किसमें पैसा ज्यादा मिलता है। अगर कपास में पैसा मिल रहा है सब कपास डालेंगे, कपास तो खाएगा नहीं ना, खाएंगे क्या, गन्ना का खेत खाएगा कोई, फिर भाई उपजाव आ जाएगा, खेत कर बेचकर पैसा आएगा, फिर धान खरीदोगे। जो इस प्रकार का मानसिक चिंतन हो सभी रण्य अच्छा है। खेतीबाड़ी वाले स्टूडेंट्स भी आजकल जितने भी एजुकेशन पढ़ने जाते हैं कॉलेज में कौन सा डिग्री लेते हैं, तो आप सब स्टूडेंट्स लाइफ से आए हैं, आप कोई भी सेलेक्ट करने से पहले ज्ञान के लिए करते हैं या किस में पैसा ज्यादा मिलता है वो करते हैं, पहले वो पढ़ाई शुरू से पहले बोल रहे कौन सा डिग्री करने से मेरे को नौकरी अच्छा मिलेगा, ये सब हिरण्य अच्छा ही है। इस भाव का मानसिक है, भागवतम में जो है हमारे को संदेश मिलता है, एक कथा के तौर पर हम थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं, कथा तो ही है लेकिन भगवान का हर एक लीला में हमारे को एक संदेश मिलता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी नवाध्याय में बता दें, पुरुषो रामचरितम श्रवण उपधारयन आनुषम सपरो राजन कर्म बंध विमुच्यते। पूरा 3 अध्याय में रामायण को बताने के बाद बोलते हैं, राजन ये भगवान श्री हरि श्री राम का कथा जो सुनते हैं उपधारण सुनना, सुनने के विधान तभी समाप्त हो गया है उपधारयन, पहले सुनना चाहिए मनन करना चाहिए मनन करना चाहिए स्मरण करना चाहिए और निजाध्यास करना चाहिए। जब तक निजाध्यास नहीं करते सुनने का नहीं, सुनने का तो है प्रभाव होता ही है, इंद्र शुद्ध हो जाएगा लेकिन उसके बाद हमारे जीवन में अमल करना निजाध्यास करना चाहिए तभी कथा का पूरा लाभ उठा लेते हैं। इसलिए बोलते उपधारयन, ऐसा भगवान श्री राम का कथा सुनेंगे हमारे जीवन में अमल करेंगे, चाहे भगवान राम को हो कृष्ण को हो कोई भगवत कथा या भगवान शुद्ध भक्तों का कथा हम सुनते हैं, उनसे संदेश लेकर हम जीवन को भी मोड़ना है तभी उसका कथा सुनने का लाभ है। उससे क्या होता है आनुशंस परो राजन, आनुशंस क्या है, नृशंस का अर्थ क्या है राक्षसत्व, मनुष्य के लिए क्रोधा का कोई स्थान नहीं है। भागवतम श्रीमद भागवतम 7वां स्कंद का 11वां अध्याय में 700 श्लोक से लेकर 12 श्लोक तक ये 6 श्लोक में मनुष्यों का 30 गुण बताया, श्रील प्रपद उसका अध्याय का नाम देते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये 6 श्लोकों को 30 गुण है और 30 गुण जो है भक्तों का गुण है। अर्थ है कि जो भी मनुष्य जीवन में जन्म लेते हैं वो सभी भक्त बनने के लिए ही मनुष्य शरीर में लाओ और कोई नहीं है, उसमें किसी प्रकार का क्रूरता नहीं। जहां मनुष्य में क्रूरता आ जाता है वो राक्षस बन जाता है, ठीक है ना, और क्रूरता आ जाता है क्रूरता का कारण क्या है, हमता अहंकार मिथ्या अहंकार लोभ माच्छर्य इसके कारण जो है उसका क्रूर स्वभाव हो जाता है। और जब भक्ति में सबसे पहला हमारा शिक्षा देते हैं कि जीवेर स्वरूप हो कृष्णेरा नित्य दास, जब हमता भाव जब तक निकलेगा नहीं है तब भक्त कैसा बनेगा। तो ये यहां पर देख सकते हैं देवता और असुरों के दोनों के बीच में इसलिए झगड़ा चल रहा, देवता तो अच्छा भक्त भगवान का भक्त है लेकिन उनके साथ साथ ये भी मालूम रहता है कि हम भगवान के दास है, लेकिन वो देवताओं में कभी अहंकार आ जाते जब जिस प्रकार के इंद्र ने अहंकार के वश जो है भगवान के शक्ति को तिरस्कार किया और रज को पूरा पान पानी में डुबाना चाहते गोवर्धन लीला को मालूम है, तब भगवान जो है तुरंत उसको सुधारने के लिए अपना लीला गोवर्धन लीला करके उनको सुधार देते हैं। भक्त के प्रति भक्ति में भक्ति से कोई ऐसी गलती हो जाता है भगवान तुरंत ही उसको सुधारने का यत्न करते हैं, परंतु अभक्त है गलती करते ठीक है तो अपना धर्म में जा रहा हो, लेकिन भक्त भगवान के लिए अत्यंत प्रिय है इसलिए भगवान भक्तों से गलती होने से ज्यादा देर तक चुप नहीं रहते हैं। और दूसरा क्या, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, ये किसका गुण होता है दानव प्रवृत्ति वालों का, आजकल देखते हैं ना बहुत सारे मेरे पास इतना शक्ति है मैं जो बोला हो जाता है नहीं तो मैं मार दूंगा बोलते हैं ना, दादागिरी बोलते क्या बोलते हैं ऐसी है, मैं तो ईश्वर माँ सबका मेरा अधीन में है मैं ही सबको भोग करूंगा सिद्धो हम पूरा परफेक्शन है मैं बलवान हूं। ये किसमें था, हिरण्यकश्यप में सब गुण था ना, ये जो भी पूरा दूसरों का संपत्ति लेकर भोगना चाहते वो सब हिरण्यकश्यप है, ये गुण रहता है। तो दानवों में प्रायः ये देखा जाता है कि इस प्रकार का चेतन रहता है, तो ये हमारा शरीर में भी हमारे मन में भी कभी दानव प्रवृत्ति आता है तभी असुर सुर प्रवृत्ति रहता, देवता प्रवृत्ति रहता, तभी असुर प्रवृत्ति रहता, दोनों का संघर्षण चलते रहता है हम लोगों के बीच में भी। इसलिए हम जितना हम भक्तों का सांगत्य लेते हैं और जितना भक्तों का सांगत्य में रहकर भगवान का चिंतन करेंगे, नाम जप करते रहेंगे, तभी हम तो समास से बच जाएंगे, अन्यथा नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में जलील में कहा गया, वैष्णव अपराध क्या होता है? हाथी माता, मैड एलिफेंट जैसा है। यहां पर देख सकते हैं इंद्र महा ऐश्वर्यन महाशक्ति है, इसमें शब्द में क्या दिया, स्वराट दिया। स्वराट शब्द केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रयोग किया जाता है और किसी को नहीं, लेकिन इंद्र भी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वहां पर कभी उसको भी स्वराज शब्द से प्रयोग किया जाए, संबोधित कर रहा। इतना स्वराज, इतना महाशक्ति स्वतंत्र है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है होने के कारण जो उसको बहुत शक्ति प्रदान किया, परंतु अहंकार के कारण जो है कभी कभी वैष्णवापराध करते हैं। जब अहंकार से वैष्णवापराध कर दिया तो फल क्या है, देखा है कि इतना कष्ट भोगना पड़ रहा, शापग्रस्त हुआ। इतना ऐश्वर्य होते हुए भी इस प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ रहा। इसी प्रकार से हम भी भक्ति में रहते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए, कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए किसी भी अवस्था में। कभी बोलते हैं नहीं वो प्रभु ऐसा गलत कर रहा है, वो कर रहा तो आप और हमारी चिंता नहीं, उनका गुरु का चिंता है, ठीक है ना। टेम्पल में रहते टेम्पल मैनेजमेंट का चिंता, अध्यक्ष है कमांडर है उनका चिंता है, हर एक चिंता करने की जरूरत है। हम स्वयं अपना अच्छा भक्ति करने का यत्न करना चाहिए, और अन्यथा वैष्णव अपराध हो जाएगा। वैष्णव अपराध से जब ही हो जाता है, सदाचार में सिखाया ही है कि वैष्णव अपराध से होता है, जब ही अनजान में हम मनुष्य कभी हो जाते हैं, किसी के प्रति ऐसी भावना आ जाता है, मानसिक रूप से भी अपराध हुआ, हम तुरंत उसके पास जाकर दंडवत प्रणाम करके क्षमा का याचना करना चाहिए। नहीं तो वही मानसिक रूप से भी हम अपराध किया, हमारा भक्ति में बाधा पड़ेगा। भागवत का संदेश यही कि इंद्र जो है ऐश्वर्यवान भगवान का प्रतिनिधि होते हुए भी इस प्रकार के युद्ध में आ रहा है, ये युद्ध हमारा मन में भी हमेशा चलता रहता है। अंत में क्या, जिस प्रकार इंद्र का पतन हो जाता है, हम भी भक्ति से पतन होने का पूर्ण संभावना है। उदयगिरी पर्वत के चोटी पर अनेक झीलों धार से झरनाओं के रूप में निरंतर जल झरता रहता है। इसी प्रकार इंद्र का वाहन ऐरावत जल तथा असुरा संचित रखता है, इंद्र का और इनके पुहार छोड़ता रहता है। इस प्रकार ऐरावत की पीठ पर बैठा इंद्र उदयगिर से ऊपर उठते तेजस्वी सूर्य के भांति प्रतीत हो रहा था। इतना तेजस्वी है लेकिन फिर भी लड़ाई माना पड़ा, क्यों लड़ाई में इस स्थिति में क्यों आ गया, वैष्णव अपराध से। अगर वो वैष्णव अपराध नहीं किया होता ये स्थिति नहीं आना था। तो इसलिए तो हमें भाव से संदेश लेना चाहिए कि चाहे किसी भी स्थान में रहते हैं वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, अपना ऐश्वर्य से कभी उस मोहित नहीं होना चाहिए। भागवत में हमारा हर समय संदेश देता रहता है कि भक्ति में हम कैसा रहना चाहिए, भक्त कैसा रहना चाहिए। उस संदेश को हमारे जीवन में रख ले तभी हमारा भागवत कथा सुनने का लाभ हो जाता है। तो आज का प्रसंग में ये केवल ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार जो है अमृत नहीं मिलने का कारण समस्त देवता दानव जो है देवताओं के प्रति युद्ध का घोषणा करते हुए अलग अलग बाना अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध में प्रवेश किया है। यहां तक ये है, आगे बोलने से फिर कल वाल जो बात कर रहे हैं उसका हो जाएगा। यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न या आलोचना है बोल सकते हैं। आप प्रभु
हरे कृष्ण, जो वैष्णव अपराध के बारे में बताए हैं किस किस टाइप का, कैसे जान सकते हैं कि हमसे वैष्णव अपराध हुआ है, क्या क्या वैष्णव अपराध हैं? जैसे अभी इंद्र ने उस गार्लैंड को हाथी को पहना दिया, तो वैसे नॉर्मल जीवन में मतलब किस किस टाइप का अपराध होता है?
अभी इंद्र दुर्वासा महर्षि सब जानते ब्रह्मर्षि है, साधारण नहीं है, भगवान शिव जी का अवतार है। उनके गले से दिया हुआ है आशीर्वाद मानना चाहिए। जब उदय है कि यहां पर हमारे को हार मिला है, मैं पहनकर उधर फेंक दिया, ये अपमान प्रपा का है। यदि हम राधा राजविहार का महार है तो मैं भगवान के प्रति अपराध कर रहा हूं, इसका आदर नहीं दे रहा हूं। भगवान का अंग से स्पर्श हुआ, इसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं, इस भाव से हमेशा इसको रखना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार जो है कोई भी भक्त कभी भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए, अरे ये भक्त कुछ नहीं जानता, कभी नहीं, मैं ये अच्छा बोल सकता हूं, नहीं। वो भाव आ गए तो फिर अहंकार आ गए ना, किसी प्रकार का दूसरा भक्तियों के प्रति स्पर्श भाव नहीं आना चाहिए। एक तो मानसिक रूप में वो फिर कहीं बोलेंगे अरे कलयुग में तो मानसिक रूप से पाप होता है तो उसका फल नहीं है, हाँ, अस्तु ये शास्त्र कहे अन्य युग में मानसिक रूप से भी पाप चिंतन होने से उसका फल भोगना पड़ता है, कलयुग में नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि मानसिक रूप से हमेशा पाप चिंतन करते रहूं, और बार बार चिंतन करते रहोगे तो क्या हो जाता है, तीन स्थायी होता कोई काम, थिंकिंग विलिंग एंड डूइंग, ठीक है ना। पहले थिंकिंग करें हाँ ऐसा करना, फिर उसके बाद अमल में लाओगे, प्रैक्टिकल करेंगे। इसलिए हमारे मानसिक चिंतन में कोई इस प्रकार का भाव आ जाए तुरंत तो हाथ पर समाप्त करना चाहिए। किसी प्रकार भक्तों के प्रति हमारे मानसिक रूप से भी वैषम्य भाव आया तुरंत ही उस भक्ति के पास जाओगे दंडवत प्रणाम करो। यदि हमारे से किसी वैष्णव के प्रति ऐसा अपराध हुआ जिससे हमारा नाराज, आपको मालूम है कि वो भक्त हमारे से नाराज है, उसके पास दंडवत प्रणाम करो और बताना है कि उनको सेवा करना चाहिए, तभी सेवा से संतुष्ट हो जाते। अगर वो नहीं भी मानता उसको कोई न कोई सेवा करते रहो, तो आपके सेवा से जिस प्रकार हम भगवान का सेवा करते हैं तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरुमार्ग का सेवा करेंगे सेवाएं नहीं कि दायर से जाकर उनके करें, गुरुमार्ग का आज्ञा का अनुसार चलना भी सेवा है, ठीक है ना। तो भगवान का सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु महाराज का सेवा करने से गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार जिस वैष्णव प्रति हमारा अपराध हो उसका सेवा करने से भी वो प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारा अपराध को क्षमा करेंगे। जब यद मेरे से कोई अपराध हुआ, अपराध का क्षमा मांगने में कोई हम किस नहीं होना चाहिए। अपराध की क्षमा नहीं मांग रहा हूं अर्थ है मेरे में अभी भी अहंकार है, ठीक है ना। और कोई श्रीमद्भागवत पुराण की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।